श्रोताओं नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। तो आइए श्रोताओं, आज के इस बाइबल अध्ययन को हम आरम्भ करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर के प्रेम में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस अध्ययन में बैठे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हम फिर से यहेजकेल नबी की पुस्तक से अध्ययन करने जा रहे हैं और यह अध्ययन हम में से हर एक के लिए यहेजकेल की पुस्तक से अंतिम अध्ययन होगा। आप हमारे इस अध्ययन में बने रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यहेजकेल की पुस्तक के अध्ययन में आपने आरंभ से लेकर अब तक संभाला है। आपने हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आशीषित किया है। आज जब हम इस पुस्तक से अंतिम अध्ययन करने जा रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी आशीष प्रदान करें, उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ दें, ताकि हम फिर से इस पुस्तक की उस महान गंभीरता को समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। और विशेष प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, परेशान हैं, निराश और तनाव में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, और यहाँ तक कि कई परिवार अपने जीवन में पारिवारिक आशीष के इंतजार में हैं। पिताजी, प्रत्येक पर अपनी अनुग्रह प्रदान करें। आज की इस घड़ी हम में से हर एक को आशीषित करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहेजकेल नबी की पुस्तक से हम अध्ययन कर रहे थे और यह अध्ययन हम में से प्रत्येक के लिए इस पुस्तक का अंतिम अध्ययन होगा। आज हम देखेंगे अध्याय 40 से, जिसका विषय है प्रभु राज का मंदिर, मंदिर में आराधना, परमेश्वर की महिमा का लौट आना। मेरे प्रियो, अध्याय 40 से अध्याय 48 यहेजकेल की पुस्तक का अंतिम भाग है। इस भाग में आप प्रभु राज्य अर्थात सहस्त्र वर्षीय राज्य में मंदिर का विवरण देखेंगे। यहाँ मूसा की व्यवस्था के अनुसार आराधना होगी, संगीत होगा और गायक भी होंगे। इसमें इसराइल देश का दर्शन भी है। हम बढ़ते हैं प्रभु राज का मंदिर। अध्याय 40 से 42 में प्रभु राज के युग के मंदिर का वर्णन किया गया है। मैं निश्चय ही उसे देखना चाहता हूँ, परंतु सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज में आराधना करना नहीं चाहता, क्योंकि वहां प्रभु के साथ हमारी उपस्थिति होगी। मेरे मित्रों, यह मंदिर इस पृथ्वी पर होगा और मैं नए यरूशलेम में प्रभु के संगति में रहना चाहता हूँ। आइए हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे यहेजकेल की पुस्तक 40 अध्याय उसके एक पद में, हमारी बंधुआई के 25वें वर्ष अर्थात यरूशलेम नगर के ले लिए जाने के बाद 14वें वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसने मुझे वहां पहुंचाया। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यरूशलेम उजाड़ा गया और मंदिर जला दिया गया है, परंतु यहेजकेल को सहस्त्र वर्षीय राज्य के मंदिर का दर्शन दिया गया। यहेजकेल 40 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इसराइल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्षिण की ओर मानो किसी नगर का आकार था। जब वह मुझे वहां ले गया तो मैंने वहां देखा कि पीतल के समान और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। धर्म शास्त्र में मापने के दंड के साथ जब कोई भी प्रकट हुआ है तो वह स्वर्गदूत ही रहा है। यहां भी एक स्वर्गदूत है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करने को तैयार है। छोटे भविष्यवक्ताओं और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी हम इसे देखते हैं। यहेजकेल की पुस्तक 40 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिए यहां पहुंचाया गया है कि मैं तुझे ये बातें दिखाऊं, और जो कुछ तू देखे वह इसराइल के घराने को बताए। मेरे मित्रों, यह मेरी व्यक्तिगत भावना है कि यहेजकेल यथावत यरूशलेम लाया गया था और वहां उसे सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज्य के समय का मंदिर दिखाया गया। यहेजकेल 40 अध्याय के 5 पद में हम पढ़ते हैं, और देखो भवन के बाहर चारों ओर एक दीवार थी, और उस पुरुष के हाथ में मापने का बांस था, जिसकी लंबाई ऐसे 6 हाथ की थी, जो साधारण हाथों से 24 भर अधिक है। अतः उसने दीवार की मोटाई मापकर बांस भर की पाई, फिर उसकी ऊंचाई भी मापकर बांस भर की पाई। 5 पद से इस सभी अध्यायों में हमें मंदिर की विस्तृत जानकारी दी गई है, उसका परिवेश दिखाया गया है। यह मंदिर वास्तव में असीम सौंदर्य का स्थान होगा। यहेजकेल की पुस्तक 40 अध्याय उसके 39 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, होम बलि, पाप बलि और दोष बलि के पशुओं का वध करने के लिए फाटक के ओसारे के पास उसके दोनों ओर 2-2 मेजें थी। यहां पर ध्यान दीजिए, पद 39 से 42 में हम देखते हैं कि याजकीय आराधना और होम बलि, पाप बलि, दोष बलियों के साथ मूसा की व्यवस्था का पुनः स्थापन होगा। तब हम पढ़ते हैं यहेजकेल 40 उसके 41 पद में, फाटक के दोनों ओर 4-4 मेजें थी, सब मिलकर 8 मेजें थी, जो बलि पशु वध करने के लिए थी। प्रभु राज्य के मंदिर में भी बलियां चढ़ाई जाएंगी। मैं इस विषय पर अध्याय 45 में चर्चा करूंगा। यहेजकेल की पुस्तक 40 अध्याय के 44 पद में आगे लिखा है, भीतरी आंगन के उत्तरी फाटक के बाहर गाने वालों की कोठरियां थी, जिनके द्वार दक्षिण की ओर थी, और पूर्वी फाटक की ओर एक कोठरी थी, जिसका द्वार उत्तर की ओर था। मंदिर में संगीत और गायक भी होंगे। यहेजकेल 40 अध्याय के 47 पद में आगे लिखा है, फिर उसने आंगन को मापकर उसे चौकोर अर्थात 100 हाथ लंबा और 100 हाथ चौड़ा पाया, और भवन के सामने वेदी थी। मेरे मित्रों, यहां हमारा ध्यान फिर से बलि की वेदी की ओर आकर्षित किया गया है। आज यरूशलेम की पवित्र होटल में यीशु के समय के मंदिर का एक प्रारूप रखा हुआ है। लिखा हुआ है होली लैंड होटल। इस प्रारूप में बलि की वेदी नहीं है। रूढ़िवादी यहूदी वेदी से लजाते हैं और आधुनिक यहूदी उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, परंतु प्रभु राज्य के मंदिर में वेदी होगी। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि अध्याय 43 से 46 में प्रभु राज्य के भीतर की आराधना का वर्णन किया गया है। मंदिर की चर्चा करते समय हमें स्मरण रखना है कि सुलेमान के मंदिर से परमेश्वर की महिमा शकीनाह ने प्रस्थान कर लिया था, परंतु अध्याय 43 में महिमा, जिसे तेज कहा गया है, लौट कर आता है और प्रभु राज की आराधना में इसराइल की आराधना का स्रोत फिर से मंदिर में उपस्थित है। वह प्रभु यीशु के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। यहां पर अध्याय 42 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 43 के 1 से लेकर के 2 पद को पढ़ेंगे, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इसराइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। मेरे मित्रों, परमेश्वर की महिमा पूर्व से आकर मंदिर में भर जाती है। यह पृथ्वी पर प्रभु यीशु का आगमन है जिसके साथ शकीनाह आती है। 2000 वर्ष पूर्व जब वह बैतलहम में आया था तब महिमा उसके साथ नहीं थी। यहेजकेल की पुस्तक 43 अध्याय के 4 पद में लिखा है, तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। स्पष्ट है कि प्रभु पूर्व दिशा से आएगा। अध्याय 44 में हम यह देखेंगे। यहां आगे हम देखते हैं यहेजकेल की पुस्तक 43 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, अर्थात लेवीय याजक लोग जो सादोक की संतान हैं और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें तू पाप बलि के लिए एक बछड़ा देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हम मंदिर में आराधना देख रहे हैं। उस युग की बलि स्मारक स्वरूप होगी। वे प्रभु यीशु के क्रूश के कार्यों का पुनरावलोकन होंगी। पुराने नियम की बलियां प्रभु के क्रूसीकरण की प्रतीक थीं। अध्याय 45 में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। मेरे प्रियो, अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं अध्याय 44 में यहेजकेल से कहा गया कि राजकुमार पूर्वी फाटक से प्रवेश करेगा। यहेजकेल की पुस्तक 44 अध्याय उसके 1-3 पद में लिखा है, फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्वमुखी है और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है, इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा। वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। मेरे प्रियो, आज यरूशलेम का पूर्वी फाटक बंद है, वरन वहां दीवार उठा दी गई है। मेरे भाई कहते हैं कि यहेजकेल की भविष्यवाणी पूरी हुई है और मसीह के आने तक यह द्वार खोला नहीं जाएगा। परंतु इस विचार पर मुझे 2 कारणों से आपत्ति है। पहली आपत्ति, जिस राजकुमार का यहां उल्लेख किया गया है वह प्रभु यीशु नहीं है। लिखा है कि यह राजकुमार बलि चढ़ाएगा और परमेश्वर की आराधना करेगा। अध्याय 45 और 46 में आप देखते हैं। अतः वह प्रभु यीशु नहीं है। प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर है तो वह क्यों बलि चढ़ाएगा? उसे बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 46 पद में वह कह चुका है कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है। अतः यह राजकुमार प्रभु यीशु नहीं है। मेरे विचार में यह दाऊद है। बहुत से विचारक नहीं मानते कि यह दाऊद है, परंतु वे यह भी नहीं मानते कि यह राजकुमार प्रभु यीशु है। उनके विचार में यह राजकुमार कोई दाऊद का वंशज है। दूसरी आपत्ति है कि यह द्वार नगर द्वार नहीं है, यह मंदिर का द्वार है। निसंदेह आज मंदिर नहीं है, परंतु इन घटनाओं से पूर्व मंदिर का निर्माण होना आवश्यक है। शहरपनाह के द्वार का इससे कोई भी संबंध नहीं है। हो सकता है कि वह नगर द्वार से ही प्रवेश करे, वह द्वार फिर से खोला जाएगा या वहां नई दीवार और नया द्वार बनाया जाएगा। परंतु न तो यहेजकेल और न ही प्रभु यीशु जानते थे कि यह दीवार जो आज है वहां थी। वह दीवार तो वर्षों पूर्व नष्ट कर दी गई थी। मेरे प्रियो, अब हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 45 में फसह के मनाए जाने का उल्लेख पाते हैं। यहेजकेल की पुस्तक 45 अध्याय उसके 18 से 22 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना। इस पाप बलि के लहू में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के खंभों पर लगाए। फिर भूल से या अज्ञानतावश जिन्होंने पाप किया हो उनके लिए महीने के सातवें दिन को भी यूं ही करना। इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। पहले महीने के 14वें दिन को तुम्हारा फसह हुआ करे, वह 7 दिन का पर्व हो और उसमें अखमेरी रोटी खाई जाए। उस दिन प्रधान अपने और प्रजा के सब लोगों के निमित्त एक बछड़ा पाप बलि के लिए तैयार करे। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं निसंदेह फसह प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। पहला कुरिन्थियों के पत्री 5:7 में पौलुस कहता है कि हमारा फसह मसीह यीशु हमारे लिए बलि किया गया था। यहाँ पर हमें एक प्रमुख प्रश्न का उत्तर देना है। पुराने नियम के सब बलिदान तो प्रभु यीशु मसीह में पूरे हो गए, तो फिर प्रभु राज में उनकी क्या आवश्यकता होगी? मुझे तो यहाँ विषमता दिखाई नहीं देती है। मेरे विचार में वे बलिदान वैसे ही होंगे जैसे आज हमारा प्रभु भोज है, जो हमें प्रभु यीशु के आगमन और क्रूस पर उसके मरकर मुक्ति दिलाने का स्मारक हैं। अब कोई कहे वास्तविक बलिदानों की क्या आवश्यकता है? मेरे मित्रों, मानव जाति को कुछ सीखने में बड़ी कठिनाई होती है। यही कारण है मेरे विचार में कि स्वर्ग में मसीह यीशु का वास्तविक लहू होगा, वह इसलिए कि वह स्मरण रखें कि हमें कैसे गढ़े से खोद कर निकाला गया है। पाप और नरक से हमारा उद्धार और स्वर्ग प्रवेश एक अति महान कार्य है जो केवल परमेश्वर कर सकता है। स्वर्ग में प्रभु का लहू कलीसिया को इसका स्मरण कराता रहेगा। इस पृथ्वी पर फिर से बलि चढ़ाई जाएंगी कि इसराइल पर प्रकट हो कि उन्हें कैसे मुक्ति मिली है। आइए हम देखें देह का दर्शन। यहेजकेल की पुस्तक 47 अध्याय उसके 1-2 में लिखा है, फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। भवन की डेवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था, अर्थात वह वेदी से निकलकर जा रहा था। वहां से सब आशीषें प्रवाहित होती हैं। हमें जो भी आशीष मिलती है वह प्रभु यीशु के मृत्यु से आती है जो उसने आपके और मेरे लिए क्रूस पर उठाई। यहां जल पवित्र आत्मा का प्रतीक है। इन पदों से अनेक आत्मिक शिक्षाएं ली जा सकती हैं। यहेजकेल के पुस्तक 47 अध्याय के 3 में लिखा है, जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1,000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। यह विश्वासियों के आत्मा में चलने का प्रतीक है। यहेजकेल 47:4 लिखा है, उसने फिर हजार हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और हजार हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। जल घुटनों तक था, यह प्रार्थना का द्योतक है। जल कमर तक था, यह सेवा हेतु कमर कसना है। विश्वासी का जीवन और सेवा को प्रभु यीशु में हमें प्राप्त उद्धार पर निर्भर करना है। यहेजकेल 47 के 5 में लिखा है, तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। जल बढ़कर तैरने के योग्य था, यह पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का द्योतक है। यह उस दिन के विषय में है जब परमेश्वर अपनी प्रजा पर पवित्र आत्मा उंडेलेगा। इस समय उसने ऐसा नहीं किया है। यहेजकेल 47 के 7 पद में लिखा हुआ है, लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं, बहुत से वृक्ष हैं, यह हमारे जीवन के फल हैं। मैंने आपको इन पदों की व्यवहारिकता बताई है जो हमें अपने जीवन में अपनाना है, परंतु इसराइल के लिए इसकी व्याख्या है कि उस दिन वेदी से जल का अनंत सोता फूटेगा जिसके द्वारा वह देश आशीषित होगा। मेरे मित्रों, उन्हें आज पानी की घोर आवश्यकता है। अब हम आगे देखते हैं, अध्याय 48 में इसराइल को 12 गोत्रों में बांटा गया है। हमारे लिए विशेष रुचि का गोत्र दान है। यहेजकेल के पुस्तक 48 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, गोत्रों के भाग ये हों, उत्तरी सीमा से लगा हुआ हेतलोन के मार्ग के पास से हमात की घाटी तक और दमिश्क की सीमा के पास के हसरेनान से उत्तर की ओर हमात के पास तक एक भाग दान का है, और उसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा भी हो। दान की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक आशेर का एक भाग हो। मेरे मित्रों, यद्यपि यह गोत्र महाक्लेश के युग में मुहर लगाए हुओं में नहीं है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय उसके 4 से 8 पद में भी हम पढ़ते हैं, यह प्रभु राज्य में उपस्थित है। दान वंशी महाक्लेश में सेवारत नहीं है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से वे प्रभु राज्य में लाए जाएंगे। हम भी अनुग्रह द्वारा उद्धार पाए हुए हैं, परंतु सेवा फल पाते हैं। यहेजकेल की पुस्तक उस नगर के चित्रण के साथ अंत होती है। प्रभु राज्य में मंदिर और वह देश शराब मुक्त हो गए हैं, यह कैसा अद्भुत चित्रण है। यहेजकेल की पुस्तक 48 अध्याय के 35 पद में हम पढ़ते हैं, जो इस पुस्तक का अंतिम पद है, नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहवा शामा रहेगा। मेरे प्रियो, यहेजकेल बड़ी आशा से समाप्त करता है कि उस जगह का नाम यहवा शम्मा होगा। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए कि उसने हमें यहेजकेल की पुस्तक से अपनी बातों को हमें समझाया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपने भी इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा से अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि इस पुस्तक के द्वारा आपने अपने जीवन में लाभ प्राप्त किया है। अगले अध्ययन में हम एक नए पुस्तक के साथ अध्ययन आरंभ करेंगे, इसलिए कृपया आप उसे भी अवश्य सुने। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाक का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो। अंधकार इस जहान का भटकाएगा तुम्हें, डरना नहीं जहान की ज्योति तुम्ही तो हो। मुंजी मसीह पाप का खत भी तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाक रखना वो भी तुम्ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआए तो देगा जवाब उसके अपने तुम्ही तो हो। अब जो खुदाए पाक से मांगी दुआए तो देगा जवाब उसके अपने तुम्ही तो हो। मुंजी मसीह पाप का खत भी तुम्ही तो हो, घर उसका पाप रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाप रखना वो भी तुम्ही तो हो। मंदिर खुदाए पाप का प्यारो तुम्ही तो हो, घर उसका पाप रखना वो भी तुम ही तो हो।